आशिका और अभिमान घर पर लौट आए थे। जब से अभिमान ने आशिका को अभिमन्यु के साथ बात करते देखा था, उसके बाद से ही वो आशिका से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। वापस लौटते वक्त भी पूरे रास्ते उसने आशिका से ठीक से बात नहीं की थी। आशिका घर आकर अभिमान से उसके मूड अपसेट होने की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन निशा उनके आने का ही इंतजार कर रही थी। अभिमान पिछले दो दिनों से उसे टाल रहा था, लेकिन अब उसने आशिका को कमरे में भेजा और खुद निशा के साथ उसके रूम में आ गया था। निशा ने अभिमान के चेहरे की तरफ देखा, वो थका हुआ और परेशान लग रहा था। निशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सहलाते हुए पूछा, मूड क्यों अपसेट है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, अभिमान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। निशा कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। वो अभिमान से सीधे सीधे बात करने से हिचकिचा रही थी। आखिर गलती भी तो उसकी थी, क्या उसने कुछ किया है? कुछ पल रुकने के बाद निशा ने अचानक पूछा। उसने सारा ब्लेम आशिका पर डालते हुए कहा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। हो गया आपका? अभिमान ने सख्त आवाज में कहा। उसने निशा की तरफ घूर कर देखा और दांत पीसते हुए आगे बोला, मुझे लगा था कि आपने जो किया उसके लिए आप सॉरी फील कर रही होंगी, इसलिए बार बार मुझसे बात करने के लिए सामने आ रही हैं। मुझे भी आपको इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप फिर से उस पर उंगली क्यों उठा रही हैं? क्या आपको अपने पति की करतूतें अभी भी दिखाई नहीं दे रही हैं मॉम? अभिमान का गुस्सा अब उसके बस में नहीं रहा था। वो निशा को समझाते हुए थक गया था। निशा हैरानी भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। अभिमान ने गहरी सांस ली और निराशा भरे स्वर में कहा, आप कब समझेंगी? पहले मैं आपको ये समझाकर थक गया था कि आपको उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें तलाक दे दीजिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। आपकी वजह से मैं भी इस घर में आज तक अटका हुआ हूँ। अब जब आपके सामने उनकी पूरी सच्चाई आ गई है, फिर भी आप उनकी गलतियों को देखने के बजाय बार बार ऐश को टारगेट कर रही हैं। निशा की नज़रें नीची हो गई थीं। उसने कुछ नहीं कहा और शायद उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था भी नहीं। अभिमान ने एक नज़र निशा की तरफ देखा। जब उसे लगा कि निशा कुछ नहीं बोलने वाली है, तो वो वहां से जाने लगा। जैसे ही अभिमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए, निशा ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, रुको, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अभिमान के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने निशा की तरफ पलट कर देखा और हैरानी भरे लहजे में पूछा, कौन सी बात? तुम्हारे डैड को तलाक देने की बात। मैं उन्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, निशा ने अभिमान की आंखों में देखते हुए कहा। अभिमान के चेहरे पर हल्की तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, बोलिए, क्या शर्त है? सिर्फ मेरा और तुम्हारे डैड का ही डिवोर्स नहीं होगा। अगर तुम सच में मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहते हो, तो तुम्हें भी उस लड़की को तलाक देना होगा, निशा ने अपनी शर्त रखते हुए कहा। इसी के साथ अभिमान हंस पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। ऐसा लग रहा था निशा ने जो भी कहा, उसे अभी भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था। निशा उसकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। यहाँ कोई मजाक चल रहा है जो तुम हंस रहे हो, निशा ने गुस्से में कहा। अभिमान हंसते हुए रुका और सख्त आवाज में बोला, एग्जैक्टली, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोई मजाक तो चल नहीं रहा जो आप मुझे उसे डिवोर्स देने के लिए कह रही हैं। आप दोनों के रिश्ते में तो प्यार भी नहीं, फिर भी आप इतने सालों से इस घर में रह रही हैं, अपनी पत्नी होने के सारे फर्ज निभा रही हैं। हमारे रिश्ते में प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इतने साल आपने आकाश राजवंश की पत्नी के तौर पर बिताए हैं, तो आगे के कुछ साल और बिता दीजिएगा। अभिमान किसी भी हाल में निशा की जिद के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था, फिर भले ही वो उसे आकाश से तलाक देने की बात ही क्यों ना कह दे। निशा अपनी तरफ से हर कोशिश करके हार गई थी। वहीं अभिमान को भी समझ आ गया था कि वो निशा को कितना भी समझा दे, लेकिन सच उसकी आंखों के सामने होने के बावजूद वो देखना ही नहीं चाहती थी। अब कहने या बहस करने लायक कुछ नहीं बचा था, तो अभिमान जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, निशा ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, तुम तो उसे प्यार करते हो, लेकिन उसका क्या? मुझे कभी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जज्बात नजर नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे डैड से बचने के लिए तुम्हारे साथ है और तुम उसके एक गार्ड के अलावा और कुछ नहीं हो। इस बार अभिमान नहीं रुका और जाने लगा, लेकिन निशा उसके पीछे चलते हुए आ रही थी। उसने पीछे से चिल्लाकर कहा, इस बार तुम बहस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं सच कह रही हूँ। वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा मूड अपसेट है, और ना ही वो तुम्हें कभी मनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, रहो उसके साथ, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि एक तरफा प्यार कितनी तकलीफ देता है। तुम मुझे बोलते हो ना कि मैं इस शादी में क्यों हूँ, तो मैं अपने बेटे के लिए रुकी हुई थी, लेकिन तुम्हारे बीच तो कोई वजह भी नहीं है जो तुम उस लड़की को अपने पास रोक सको। मुझे लिखवा कर ले लो, एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। निशा पीछे से चिल्लाती रह गई, लेकिन अभिमान ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर चला गया था। वहीं आशिका अपने कमरे के अंदर थी और इस वक्त न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। अभिमान अब तक आया क्यों नहीं है? वो मुझे कुछ अपसेट नजर आ रहा था। क्या कुछ हुआ है जो वो बता नहीं रहा? वो अपनी मॉम से बात करने गया है तो जरूर मिसेज राजवंश पूरी कोशिश करेंगी कि अभिमान को मेरे खिलाफ भड़का सके। क्या वो उनकी बात मान लेगा? आशिका ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे अभिमान की नाराजगी महसूस नहीं हो रही थी, बस उसे पूछने का मौका नहीं मिला। वहीं अभिमान इस वक्त अपनी गाड़ी में था। निशा से वो कितनी भी बहस कर ले, लेकिन आज उसे निशा की बात सच लग रही थी। उसने कभी आशिका की आंखों में खुद के लिए इमोशंस देखे ही नहीं थे। उससे ज्यादा कंफर्टेबल तो वो अभिमन्यु के साथ थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही इस रिश्ते को बचाने और आगे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी तरफ से कोई एफर्ट्स नजर क्यों नहीं आते ऐश? अभिमान ने भारी आवाज में कहा। वो दुखी था लेकिन आशिका को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए कुछ देर अकेले वक्त बिताना चाह रहा था। दूसरी तरफ गोवा में अभिमन्यु ने ब्लड डोनेशन कैंप के खत्म हो जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसके बाद उसने आशिका को घर छोड़ दिया था। रात के लगभग 8 बजे के करीब अभिमन्यु राजवंश एम्पायर पहुंचा। संडे होने की वजह से कुछ ओवरटाइम करने वाला ही स्टाफ वहां पर मौजूद था। इस बार अभिमन्यु अपने केबिन में जाने के बजाय पृथ्वी के केबिन में गया था, जहां वो कुछ फाइल्स पर काम कर रहा था। ऐसा बहुत कम होता था जब अभिमन्यु पृथ्वी के पास जाता था। उसे अचानक वहां देखकर पृथ्वी जल्दी से खड़ा हुआ और उसके सामने आकर नरम लहजे में बोला, गुड आफ्टरनून मिस्टर राजवंश, आपको कोई काम था तो मुझे कॉल कर दिया होता। अभिमन्यु ने एक नजर पृथ्वी की तरफ घूर कर देखा और फिर सपाट लहजे में कहा, आशिका को तुमने बेहोश किया था? मुझे उनका ब्लड सैंपल चाहिए था। मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, और वो ठीक है, पृथ्वी ने कंधे उचका कर कहा।
लेकिन वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती है, अभिमन्यु ने मायूस स्वर में कहा। आशिका को अगर इस बात का डाउट हुआ है कि वो मिस्टर सिंघानिया की बेटी है तो ये बेवजह नहीं है। मुझे लगता है कि वो सच जानती है और खुद भी इस सच से भाग रही है। ऐसे में इस डीएनए टेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक आशिका अपने दिल से मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक हम चाहकर भी रिपोर्ट उनके सामने नहीं ला सकते हैं। ये तो बात की बात है, मैंने दोनों सैंपल लैब में जमा करवा दिए हैं और लगभग 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। आशिका को अपनी फैमिली के साथ नहीं जाना तो वो डिसीजन उसका होगा, पर कम से कम उसे तृप्ति बजाज का बोझ तो नहीं उठाना पड़ेगा। वो औरत बहुत मैनिपुलेटिव है, बिल्कुल मालविका दास की तरह, पृथ्वी ने जवाब दिया। और उसका भी वही कहना था जो दोपहर में अभिमन्यु ने आशिका को समझाया था। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम रिपोर्ट्स मुझे हैंडओवर कर देना और ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखना। पृथ्वी ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अभिमन्यु वहां से बाहर आ गया था। उसने अपने केबिन में आकर तुरंत आशिका को कॉल लगाया। उसे बेहोश करने वाला और ब्लड सैंपल लेने वाला पृथ्वी था, ये अभिमन्यु को छुपाना सही नहीं लगा। बोलिए मिस्टर राजवंश, आज ही हम मिले थे और आज ही आपने वापस कॉल कर लिया, कुछ इम्पोर्टेंट था? आशिका ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम कैंप में बेवजह बेहोश नहीं हुई थी, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। वो आशिका को कुछ समझा पाता उससे पहले आशिका ने तंज भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने मेरा ब्लड सैंपल ले ही लिया, चाहे तरीका कुछ भी हो, ये इलीगल है मिस्टर राजवंश। जानता हूँ, पर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब पृथ्वी ने किया था, अभिमन्यु ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन वो आपके ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं करता है, आशिका बोली। हाँ, आज की हमारी बात के बाद मुझे उसे मना करने का मौका नहीं मिला। खैर, मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट हो, और डोंट वरी, सब सामने आने के बाद कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हम बस ये चाहते हैं कि तुम तृप्ति बजाज को बेवजह अपनी जिम्मेदारी समझकर, जो उसकी बातें मानती हो, उससे बाहर निकल जाओ, अभिमन्यु ने उसे समझाया। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, बल्कि वो जानबूझकर मेरे गले आ जाती है और एहसान जताती है, जैसे उसने मुझे पैदा करके दुनिया का कौन सा महान काम किया है। अगर मेरा बस चलता और मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं खुद उसके थ्रू पैदा नहीं होना चाहती थी, आशिका ने आंखें घुमाकर कहा। हालांकि वो अभिमन्यु को डीएनए टेस्ट के लिए मना करना चाहती थी, पर अभिमन्यु ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। इधर उधर की बात करने के बाद अभिमन्यु ने कॉल कट कर दिया था। अभिमन्यु से बात करने के बाद आशिका ने अपना पेंडिंग वर्क कम्प्लीट किया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे, फिर भी अभिमान अब तक नहीं लौटा था। आशिका ने उसे कॉल और मैसेज भी किए, लेकिन अभिमान ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो आज रात घर नहीं आने वाला, कम से कम बता तो देता, आशिका ने गहरी सांस लेकर कहा। अभिमान को गए हुए काफी वक्त हो गया था, फिर भी वो वापस नहीं आया था। आशिका भी अब उसका इंतजार करते हुए थक गई थी। वो बाथरूम में गई और उसने कपड़े चेंज किए। अभिमान नहीं आया था, इसलिए आशिका ने बेफिक्र होकर अपने लेंसेज हटा दिए थे, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के बाहर कदम रखे तो सामने अभिमान खड़ा हुआ था।